शांति।
ओम शांति।
अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात ग्रुप नंबर एक। हेडिंग है, उड़ती कला में जाने के लिए डबल लाइट बनाओ, कोई भी आकर्षण आकर्षित न करे। सभी अपने को वर्तमान समय के प्रमाण तीव्र गति से उड़ने वाले अनुभव करते हो। समय की गति तीव्र है व आत्माओं के पुरुषार्थ की गति तीव्र है। समय आपके पीछे पीछे है या आप समय के प्रमाण चल रहे हो? समय के इंतजार में तो नहीं होना कि अंत में सब ठीक हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएंगे, बाप समान हो जाएंगे, ऐसे तो नहीं है ना? क्योंकि ड्रामा के हिसाब से वर्तमान समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है, अति में जा रहा है। जो कल था उससे आज और अति में जा रहा है, यह तो जानते हो ना? जैसे समय अति में जा रहा है, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी पुरुषार्थ में अति तीव्र अर्थात फास्ट गति से जा रहे हो कि कभी ढीले कभी तेज। ऐसे नहीं कि नीचे आकर फिर ऊपर जाओ। नीचे ऊपर होने वाली की गति कभी एकरस फास्ट नहीं हो सकती। तो सदा सर्व बातों में श्रेष्ठ व तीव्र गति से उड़ने वाले हो। वैसे गायन है चढ़ती कला सर्व का भला, लेकिन अभी क्या कहेंगे? उड़ती कला सर्व का भला। अभी चढ़ती कला का समय भी समाप्त हुआ, अभी उड़ती कला का समय है। तो उड़ती कला के समय कोई चढ़ती कला से पहुंचना चाहे तो पहुंच सकेगा? नहीं। तो सदा उड़ती कला हो। उड़ती कला की निशानी है सदा डबल लाइट। डबल लाइट नहीं तो उड़ती कला हो नहीं सकती। थोड़ा भी बोझ नीचे ले आता है। जैसे प्लेन में जाते हैं, उड़ते हैं, तो अगर मशीनरी में या पेट्रोल में जरा भी कचरा आ गया तो क्या हालत होती है? उड़ती कला से गिरती कला में आ जाता है। तो यहां भी अगर किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपने संस्कारों का, चाहे वायुमंडल का, चाहे किसी आत्मा के संबंध संपर्क का, कोई भी बोझ है तो उड़ती कला से हलचल में आ जाता है। कहेंगे वैसे तो मैं ठीक हूं, लेकिन ये कारण है ना, इसीलिए ये संस्कार का, व्यक्ति का, वायुमंडल का बंधन है। लेकिन कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। मेहनत नहीं, मनोरंजन अनुभव करेंगे। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला। तो उड़ती कला है या कभी कभी नीचे आने का, चक्कर लगाने का दिल हो जाता है? कहीं भी लगाव नहीं हो, जरा भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे। रॉकेट भी तब उड़ सकता है जब धरती की आकर्षण से परे हो जाए, नहीं तो ऊपर उड़ नहीं सकता, न चाहते भी नीचे आ जाएगा। तो कोई भी आकर्षण ऊपर नहीं ले जा सकती, संपूर्ण बनने नहीं देगी। तो चेक करो, संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे, सिवाय बाप के और कोई आकर्षण नहीं हो। पांडव क्या समझते हैं? ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बनो। बनना तो है ही ना। कितने बार ऐसे बने हो? अनेक बार बने हो। आप ही बने हो या दूसरे बने हैं? आप ही बने हो। तो नंबर वार में तो नहीं आना है ना, नंबर वन में आना है। माताएं क्या करेंगी? नंबर वन या नंबर वार भी चलेगा, 108 नंबर भी चलेगा। 108 नंबर बनेंगे कि पहला नंबर बनेंगे? अगर बाप के बने हैं, अधिकारी बने हैं, तो पूरा वर्षा लेना है या थोड़ा कम? फिर तो नंबर वन बनेंगे ना। दाता फुल दे रहा है और लेने वाला कम ले तो क्या कहेंगे? इसलिए नंबर वन बनना है। नंबर वन चाहे एक ही हो लेकिन नंबर वन डिवीजन तो बहुत है ना, तो सेकंड में नहीं आना है। लेना है तो पूरा लेना है। अधूरा लेने वाले तो पीछे पीछे बहुत आएंगे, लेकिन आपको पूरा लेना है। सभी पूरा लेने वाले हो या थोड़े में राजी होने वाले हो? जब खुला भंडार है और अखूट है तो कम क्यों ले? बेहद है ना। हद हो कि 8,000 इसको मिलना है, 10,000 इसको मिलना है तो कहेंगे भाग्य में इतना ही है। लेकिन बाप का खुला भंडार है, अखूट है, जितना लेना चाहे ले सकते हैं, फिर भी अखूट है। अखूट खजाने के मालिक हो, बालक सो मालिक हो, तो सभी सदा खुश रहने वाले हो ना। कि थोड़ा थोड़ा कभी दुख की लहर आती है, दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती। संकल्प तो छोड़ो लेकिन स्वप्न में भी नहीं आ सकती, इसको कहा जाता है नंबर वन। तो क्या कमाल करके दिखाएंगे? सभी नंबर वन आकर दिखाएंगे ना। वैसे भी दिल्ली को दिल कहते हैं, तो जैसा दिल होगा वैसा शरीर चलेगा। आधार तो दिल होता है ना। दिल है दिलाराम के दिल, तो दिल की गद्दी यथार्थ चाहिए ना, नीचे ऊपर नहीं चाहिए। तो नशा है ना कि हम दिलाराम का दिल है। तो अभी अपने श्रेष्ठ संकल्पों से स्वयं को और विश्व को परिवर्तन करो।
दिल की गद्दी या गति? दिल की गद्दी या गति?
गद्दी है, गद्दी गद्दी।
संकल्प किया और कर्म हुआ, ऐसे नहीं सोचा तो बहुत था। सोचते तो बहुत है लेकिन होता बहुत कम है, वे तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात संकल्प और कर्म समान हो तब ही बाप समान कहेंगे, खुश है और सदा खुश रहेंगे। यह पक्का निश्चय है ना। खुश रहने वाले ही खुश नसीब है। यह पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा हो जाता है? कच्ची चीज अच्छी लगती है, पक्के को पसंद किया जाता है, तो पूरा ही पक्का रहना है। रोज अमृत वेले यह पाठ पक्का करो कि कुछ भी हो जाए खुश रहना है, खुश करना है। अच्छा, और कोई खेल नहीं दिखाना, यही खेल दिखाना, और खेल नहीं करना। अच्छा, अभी मैंने थोड़ा ऐसा सोचा है कि ज्ञान के बारे में और कहे आप सभी लोग इस हिसाब से मेरे सीनियर हो, तो आपको ही कुछ ज्ञान सुनाना है, बहुत छोटा मोह बड़ी बात हो जाएगी। तो मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाले हैं कि जिसके ऊपर मैंने खुद किस प्रकार अभ्यास किया है, या बाबा ने कुछ बातें बताई है, या कुछ मेरा अनुभव है, तो उतना ही मैं सुनने में मेरा अधिकार समझती हूँ। ठीक है। उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। डबल लाइट नहीं तो उड़ती कला हो नहीं सकती। और उड़ती कला और ये डबल लाइट माना फरिश्ता, तो ये फरिश्ता का रूप मुझे बहुत पहले आकर्षित करता था। लेकिन ये फरिश्ता बनना है तो एक्चुअल क्या करना है, कैसे बनना है? तो एक क्लास में पुणे में मैंने सुना कि फरिश्ता हमेशा लाइट के कार्ड में रहता है, तो आपको भी ऐसे करना है। तो फिर भी सोचा कि माना क्या करना है। तो उस समय टीवी में एक एड आती थी और वो कोई उसकी स्किन कैसे ग्लोइंग है ऐसे कुछ दिखाती थी। तो वो एक बहुत सुंदर लड़की कहीं भी जाती है तो उसके ऊपर जैसे एक फोकस आ जाता है, वो यहाँ से वो लाइट देख के ऐसे चौंक के वहां जाती है तो वहां भी लाइट आ जाता है। तो इस प्रकार वो ऐड थी। तो मैंने कहा हाँ ये विजुअलाइजेशन के लिए अच्छा है। तो मैंने भी ऐसा सोचना शुरू किया कि मैं जहां भी जाऊं तो बाबा से वो लाइट का कार मुझ पर आ रहा है तो बाबा की याद भी ऑटोमेटिक रहती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वाह वाह। और इसका एक परिणाम ऐसे हुआ कि दूसरे लोगों को भी उससे कुछ अनुभूति होती है तो वो भी मुझे अच्छा लगा कि बाबा जो कहते हैं कि आपसे औरों को कुछ समझ में आ जाए तो वो आपसे खुद पूछे कि आप क्या करते हो। तो ऐसी एक जगह में गई थी मैं लौकिक में। तो दूसरे दिन फिर मुझे जाना था तो दूसरे दिन वो दो भाई थे तो उन्होंने पूछा कि आप कुछ साधना करती हो क्या। तो उस समय मेरा सिर्फ यही अभ्यास चलता था कि बस दिन भर वो लाइट के अंदर हो। तो मैंने कहा हाँ ब्रह्मा कुमारी जैसे। तो उन्होंने ब्रह्मा कुमारी इसका नाम भी नहीं सुना था और उनको वो कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने कहा कि ये आप क्यों ऐसे पूछ रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं कल आप जब गए ना तो 10-15 मिनट हम दो भाई चर्चा कर रहे थे कि ये इसमें क्या विशेषता थी, हम कुछ समझ नहीं पाए लेकिन कुछ हमने ऐसे अनुभव किया। तो फिर मैंने कहा बाबा ये शायद ये आपका जो लाइट है वो उनको महसूस हुआ। तो मेरा उत्साह और भी बढ़ गया। फिर है अगर किसी भी प्रकार का बोझ है चाहे अपने संस्कारों का चाहे वायुमंडल का चाहे किसी आत्मा के संबंध संपर्क का कोई भी बोझ है तो उड़ती कला से हलचल में आ जाता है। तो ये भी हमेशा मुझे लगता था कि मैं ऐसे ऊपर जाऊं। तो एक दिन मैंने एक सपना देखा कि मैं ऐसे ऊपर जा रही हूं लेकिन थोड़े अंतर जाके मैं वहां रुक गई हूं और कितनी भी कोशिश करूं मैं ऊपर जा ही नहीं पा रही हूं। तो फिर मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है, मैं जा क्यों नहीं पा रही हूं। तो फिर मेरे ध्यान में आया कि बहुत छोटी छोटी ऐसी सूक्ष्म कुछ रस्सियां थी जिन्होंने मुझे नीचे जकड़ दिया था। तो फिर मैंने और गौर से देखा तो कुछ करीब 20 लोग मुझे दिखाई दिए। मतलब मैं थोड़ी ऊपर इसलिए वो छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे, सभी नजदीक के संबंध संपर्क वाले ही थे। तो मैंने कहा अच्छा ये लोगों ने मुझे पकड़ के रखा है उन रस्सियों से। तो फिर थोड़ी मेरे अच्छा तो मैं क्या करूं ना, इसीलिए मैं उड़ नहीं सकती, इन्होंने मुझे पकड़ा है। तो फिर मैंने और गौर से देखा तो उन्होंने मुझे नहीं पकड़ा था, वो सारी रस्सियां मेरे ही हाथ में थी और मैंने ही उसके पकड़ रखा था। तो मेरी समझ में आया कि अच्छा ये लोगों ने कुछ नहीं किया है, मैंने ही इनको पकड़ के रखा है कि नहीं मेरे बेटे को मेरी जरूरत है, यहां मैं नहीं जाऊंगी तो कैसे होगा। तो वो मेरी समझ में आया। और उस समय तुकाराम महाराज की एक कहानी हमने पढ़ी थी, वो भी उसका अर्थ उस दिन समझ में आया कि वो कहानी आपको बहुत लोगों को मालूम भी होगी कि एक दिन एक प्रापंचिक उसके पास जाता है और वो कहता है कि महाराज आप तो बहुत महान हो और मैं भी आपके जैसा परमार्थी बनना चाहता हूँ लेकिन क्या करूं मैं प्रपंच में हूं तो ये प्रपंच ने मुझे जकड़ के रखा है। तो तुकाराम महाराज कहते हैं ठीक है। दूसरे दिन महाराज भले रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ होता है तो उसको ऐसे भाकी पहन के रहते हैं और आने जाने वाले लोग देखते हैं तो ये जोर जोर से चिल्ला रहे हैं अरे कोई मुझे छुड़ाओ छुड़ाओ। तो लोग देखते हैं कि इन्होंने ही पकड़ के रखा है तो इन्हें कौन छुड़ाए। तो फिर वो व्यक्ति भी आ जाता है, वो उनका भक्त होता है। तो वो जब आता है तो कहता है कि महाराज ये क्या पकड़ के तो आपने रखा है, आप हाथ छुड़ाओ तो आप छूट जाएंगे ना, दूसरा कोई कैसे आपको छुड़ाए। तो बोले पक्का? तो बोले अरे हाँ दिखाई दे रहा है ना। तो बोले हाँ तो ये कल आपने जो बोला ना उसका ये जवाब है कि आपने उसे पकड़ के रखा है तो आपको दूसरा कोई नहीं छुड़ा सकता। तो ये कहानी तो सुनी थी लेकिन ये जब सपना देखा तो मुझे पूरा एहसास हुआ कि मैंने भी किस तरह पकड़ा है।
आप ही तो करो
दूसरा ये आत्मा के संबंध संपर्क का, दूसरा है वायुमंडल का। तो अभी एक दिन यहाँ भी ऐसे हो गया कि मधुबन में बहुत रहते हैं और ज्यादा नजदीक आ जाते हैं तो न चाहते हुए भी कुछ ऐसी बातें देखनी या सुननी पड़ती है कि जहाँ मन थोड़ा हलचल में आ जाते हैं कि अरे क्या यहाँ भी ये है। तो उस दिन भी ऐसी कुछ बातें सुनाई पड़ी, कुछ माताएं ऐसी आ गई जैसे मैं कोई उनकी समस्या हल करने वाली हूँ, नहीं नहीं आपको हम सुनाएंगे। तो उससे भी मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई और मैं सोचने लगी कि अरे घर में ही हम अच्छे थे, यहाँ आ गए तो ये क्या वायुमंडल में हम आ गए। तो फिर मैंने कहा नहीं ये कुछ गलत है, तो उस पर थोड़ी सोच चलने लगी और फिर अचानक मुझे समझ में आया कि ये जैसे दलदल या दुबन कहते हैं ये आजू बाजू में है और इससे निकलना माना जैसे कमल का फूल उसी में रह के ऊपर आता है। तो बाबा ने जो कहा है कि आपको कमल फूल जैसे बनना है तो उसका एहसास उस दिन हुआ कि नहीं रहना इसी में है, इसी से कहीं भाग नहीं जाना है, क्योंकि दुनिया में जाओ तो वहां का वायुमंडल बहुत बहुत खराब है। यहाँ आके भी अगर मैं यही सोच रही हूँ तो नहीं मुझे कमल फूल समान बनना है तो इसी में, तो कमल फूल यहाँ से टूटता नहीं है वो उसी में रहता है, तो जहां हम है कहीं भी तो उसी में रह के हमें अपनी स्थिति कैसे बनानी है, तो यही शब्द का अर्थ उस दिन समझ में आया। कहीं भी लगाव नहीं हो, जरा भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे, उसका एक बाबा ने बहुत सुंदर अनुभव कराया था। कुछ साल पहले यहां मैं मधुबन में ही थी, पांडव भवन में सेवा के लिए आई थी और बीमार हो गई थी, बहुत बुखार था। तो दोपहर का समय था और मैं ही अकेले कमरे में लेटी थी, बाकी सारी माताएं सेवा में गई थी। तो अकेले अकेले नींद तो नहीं आ रही है लेकिन उठ के कहीं जाने की ताकत नहीं है इतनी। तो मैंने बाबा से रूह ध्यान करना शुरू किया और एक एक ज्ञान की पॉइंट मन में आ रही थी और उसके ऊपर बहुत अच्छा अच्छा इसका मतलब ये है ऐसे बहुत समय तक चला। और कुछ समय के बाद मैंने बाबा से कहा बाबा ये कितना अच्छा लग रहा है मुझे एक एक ज्ञान की पॉइंट पर विचार करना। तो बाबा की तरफ से जवाब आया यही तो है ज्ञान रत्नों से खेलना। तो मुझे अच्छा ज्ञान रत्नों से खेलना माने ये है। और फिर बहुत मुस्कुराते हुए जैसे बाबा धीरे से पूछते हैं लेकिन फिर भी आपको तो मिट्टी के खिलौने ही अच्छे लगते हैं ना, माने ये स्थिति ऊंची है लेकिन बहुत जल्दी आप नीचे आके वो मिट्टी के खिलौनों से ही खेलने लगते हैं। तो कोई भी आकर्षण जो यहाँ की होती है उसी में ही मैं डूब जाती हूँ। संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे, तो ये अगर करना है तो मैंने सोचा कि ये बाह्य जो चीजें हैं जो हमें आकर्षित करती है उससे पहले खुद की संभाल करें। तो माताओं के लिए तो क्या चीजें होती है, कपड़े गहने खान पान फिर सिनेमा फूल पहनना आदि आदि। तो एक एक तो कपड़े तो यहाँ भी आदत पड़ जाती है सफेद पहनने की, तो धीरे धीरे मैंने घर में भी वही करना शुरू किया कि पहले रंगीन कपड़े पहनने ही नहीं है तो उसमें बुद्धि जाना ऑटोमेटिक कम होता गया। गहने वो भी छोड़ दिए क्योंकि जैसे सुनते हैं ना कि निर्मल शांता दादी इतने बचपन से पहनती थी और एक समय उसने और ब्रिजेंद्र दादी ने कहा अरे ये सब सुनने की बातें नहीं है, चलो आज से मैं भी सब छोड़ देती हूँ। फिर खान पान तो बाबा ने हमें बाहर का खान पान से छुड़ाया ही है तो ऑटोमेटिक हो गया। सिनेमा भी अभी भी बहुत सारे लोग अरे नहीं नहीं ये बहुत अच्छी पिक्चर है इसमें कुछ गंदगी नहीं ये आप देख सकते हो, तो एक सेकंड के लिए आता है लेकिन नहीं बाबा ने बाइस्कोप वगैरह जो कहा है तो उससे भी छूट गए। फूलों का मुझे खुद को बहुत शौक था लेकिन एक दिन मुरली में आया कि आपको फूल आदि नहीं पहनना है वो जब देवताएं बनेंगे तब, तो मैंने कहा चलो आज से मैं ये फूल आदि छोड़ देती हूँ।
फूल गजरा
हाँ तो बहुत लंबे लंबे बाल भी लंबे थे तो बहुत लंबे लंबे हार जैसे पहन के
इसका भी शौक होता है
आपको तो पता ही नहीं
सिवाय बाप के और कोई आकर्षण नहीं हो। तो ये सब छोड़ने की बातें तो हो गई लेकिन जैसे हम हमेशा उदाहरण लेते हैं छोटे बच्चे का कि अगर वो हाथ में चाकू लेके उसको वो खिलौना लग रहा है लेकिन अगर वो उसे छुड़ाना है तो दूसरी कोई अच्छी चीज हम उसे दे तो ही वो चीज छोड़ देता है। तो हमने ये सारा ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो लेकिन पकड़ो क्या। तो एक बाप के आकर्षण के सिवाय कोई ना हो, तो बाबा ने ये युक्ति हमें बताई है कि सर्व संबंध एक बाबा से ही जुटे। तो वो एक एक मैंने अनुभव करना शुरू किया, पूरे तो नहीं किए लेकिन जो जो किए उससे इतना अच्छा अनुभव हुआ कि वो संबंध अभी दूसरे के साथ जोड़ने की इच्छा ही नहीं है। जैसे सूरज भाई का सुना था खुदा दोस्त, तो मैंने कहा अरे वाह ये दोस्त की बात तो बहुत अच्छी है, तो दोस्त के भी बहुत अच्छे अनुभव किए फिर अलग अलग संबंध। तो ये आकर्षण जब हो जाती है तो दूसरे आकर्षण से जैसे व्यक्तियों का वो ऑटोमेटिक कम होने लगता है।
कैसे कर लिया दोस्त?
अभी
बताऊं।
जैसे कहीं भी जाना है तो अकेले जाने के बजाय दोस्त के साथ जाना अच्छा लगता है। तो मैं बाबा को कहती हूँ कि चलो अभी अभी का अनुभव सुनाती हूँ इस बारी का। मुझे मार्केट जाना था और मैं मार्केट गई तो आते समय थोड़ा थोड़ा करके कुछ जरा ज्यादा सामान हो गया और आते समय वो गाड़ी का टाइम भी हो गया तो चलना ही था। तो मैंने बाबा को कहा कि देखो आज अगर मेरे साथ कोई होता ना तो ये थोड़ा बोझ उठा लेता, तो आप मेरे दोस्त हो ना तो अभी आप ही आ जाओ और मेरे साथ बातें भी करते चलो। तो तुरंत मुझे ऐसे फील हुआ कि पकड़ा तो मैंने ही है लेकिन जैसे उसका कुछ वजन है ही नहीं। और मैं वंडर कर रही हूँ कि अरे ये क्या है, कुछ गिर तो नहीं गया? नहीं, सामान तो पूरा है लेकिन बिल्कुल उसका बोझ फील नहीं हुआ। तो बाबा दोस्त के रूप में आकर वो भी करता है।
यहाँ भी लगता है दोस्त ही बोल रहा है।
वो तो सब कुछ करता है ना। अच्छा, बाबा से जब मैं पहली बार मिली 18 जनवरी 2002 तो उस दिन ये पक्का निश्चय हो गया। तब तक सिर्फ मानना था लेकिन उस दिन भी मैंने ऐसे सोचा था कि ठीक है सब बातें विश्वास भी है लेकिन भगवान वो स्वयं आएगा, यहाँ मैं उसे देखूंगी सुनूंगी। तो थोड़ी हलचल मन में थी कि नहीं, तो मैंने सोचा कि नहीं अभी विश्वास है भी और नहीं भी तो अभी करे क्या। तो मैंने मन में ऐसे सोचा कि मैं कुछ क्राइटेरिया रखती हूँ, ये बातें अगर हुई तो मैं मानूंगी कि ये भगवान है। तो मैंने जैसे उसकी परीक्षा, लेकिन तब तक पूरा विश्वास नहीं हो पाता है ना। तो फिर क्या करूं, तो मैंने कहा कि देखो स्टेज तो उतना दूर है, मैं यहाँ बैठी हूँ, लेकिन अगर मेरे मन में कुछ प्रश्न आता है तो उसी समय वो समझे और उसका जवाब मिले, ये कार्य सिर्फ भगवान कर सकता है। जैसे दुनिया में फेस रीडिंग करने वाले लोग हैं लेकिन वो दूरी से नहीं करते हैं, लेकिन एक सर्वशक्तिमान बाबा ही है जो उसी समय ये करेगा। तो ये मुरली में अगर मुझे कुछ प्रश्न आए और उनके कुछ उत्तर मिले तो मैं मानूंगी। तो उस मुरली में 3 बार ऐसे हुआ और इतनी मेरी आंखों से आंसू। और उसके बाद बाबा ने भी पूछा कि इस कल्प में पहली बार कौन आए हैं, और उनके लिए वही वाक्य बोला कि अब पूरा निश्चय हो गया ना,
मैंने बाबा पास हो गया।
और उस समय जानकी दादी नहीं आए थे यहाँ, वो लंदन में ही, उन्होंने कहा कि 18 जनवरी में लंदन में ही मनाऊंगी। तो बाबा ने कहा विदेशियों के लिए कि कोई कहाँ बैठा है, कहाँ किस समय होता है, लेकिन सभी बहुत प्यार से बैठे हैं और जनक बच्ची भी बहुत मीठा मीठा मुस्कुरा रही है। तुरंत मेरे मन में आया, बाबा जनक बच्ची आपकी बहुत लाडली है ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन मैं भी पहली बार आई हूँ, लेकिन देखो आपने सिर्फ उनका नाम लिया, आपको वो ही प्यारी है और मैं इतनी आई हूँ आपसे मिलने। तुरंत अगला वाक्य, वैसे सभी बच्चे बाबा को प्यारे हैं लेकिन कितनों का नाम ले तो सभी समझे मैं हर एक को उसका नाम लेकर पर्सनल याद प्यार दे रहा हूँ। तुरंत अगला वाक्य, तो मैंने कहा कि बाकी लोग तो समझेंगे हाँ बाबा ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में आया कि ये वाक्य मेरे लिए ही था। अगर बाप के बने हैं, अधिकारी बने हैं, तो पूरा वर्षा लेना है या थोड़ा कम? तो एक दिन मैं सोच रही थी कि बाबा के पास तो इतना है और मेरे पास तो इतना है नहीं, तो ये क्या अधिकारीपन हुआ? तो उसका भी जवाब बाबा ने अच्छी तरह से दिया कि देखो कोई लौकिक में बाप है जिसके पास 50 गाड़ियां हैं और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, तो सभी अधिकारी है वो 50 गाड़ियों के। तो एक छोटा बच्चा आकर कहता है कि बाबा मुझे ये गाड़ी में घूमना है, तो बाबा कहेगा ठीक है, लेकिन वो किसी व्यक्ति को देगा या ड्राइवर को बताएगा कि ये बच्चे को लेकर घूमो, लेकिन वो बच्चा कहता है नहीं मुझे खुद ड्राइव करके जाना है, तो बाप परमिशन नहीं देगा। लेकिन जो दूसरा बड़ा बच्चा है जो गाड़ी चलाना जानता है उसे तुरंत परमिशन मिल जाएगी। तो ये छोटा बच्चा कहता है मुझे क्यों नहीं, तो कहता है कि एक तो आप 18 साल के हो जाओ, फिर आपको ड्राइविंग सीखने की मेहनत करनी है, फिर आपको परीक्षा देनी है RTO की और उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा और उसके बाद आप कभी भी जा सकते हो। तो फिर बाबा ने कहा कि देखो ये आपको मेहनत करनी है, पहले ये सब चलाना सीखना है, फिर परीक्षा भी देनी है, जब आपके पास लाइसेंस हो तो आपका पूरा अधिकार हो जाएगा कि ये 50 की 50 गाड़ी आपकी जब चाहो और उस गाड़ी में घूमो।
5 साल बाकी है, 13 साल
घूम रहे हैं
वो बात अलग। अकूट खजाने के मालिक हो बालक सो मालिक हो। तो मेरे मन में आया कि अलाउद्दीन की गुफा के बारे में जो हम वर्णन सुनते हैं बहुत सारे, उसमें रत्नों और हीरे जवाहरात होते हैं, और हम ऐसे जाएं और चक्कर लगा के वाह 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 ये जैसा मेरा ही है, ऐसे अगर आ गए तो क्या फायदा। लेकिन जो व्यक्ति वहां जाके कुछ वो रत्न लाएगा और उसका कुछ इस्तेमाल करेगा उसका ही उपयोग है। तो फिर मेरे मन में आया हाँ, हम रोज मुरली सुनते हैं, कहते हैं कि इसमें बहुत ज्ञान का भंडार है, तो जैसे जाते हैं अंदर एक चक्कर लगा के वाह 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 करके हम ऐसे ही खाली आ जाते हैं। उसमें से एक भी वैल्यूएबल रत्न कुछ लाए और हम ग्रहण करें तो जो उसका फायदा है, लेकिन वो सब हमें ही करना है। तो उससे भरपूर होना, सजे सजाए रहना, ये हमारे हाथ में है। नहीं तो भक्ति में भी हम भगवान की साधु संतों की महिमा करते आए, लेकिन यहाँ तो धारणा की बात है तो उसी से हम भूल जाते हैं। और ये भी मेरा हमेशा विश्वास रहता था कि अगर अंदर धारणाएं हैं, कुछ योग की पावर है, तो आपके चलन और चेहरे बाबा जो हमेशा कहते उस पर दिखनी ही चाहिए। तो उससे जरा आज तक भी मेरा प्रयास रहता है कि बड़ी बड़ी बहनें, एक बार ऐसे हुआ मैं ज्ञान सरोवर में थी और यहाँ बड़ी बहनों की भर्ती चल रही थी, एकदम सीनियर बहनें, और हम वहां सुनते थे कि नहीं अरे क्या वातावरण है वगैरह सब। तो उनको वहां एक दिन खाने पे बुलाया था, तो मैं ऐसे रास्ते में बैठ गई कि वो वहां भी वो एक घंटा योग करने आई थी, तो वो योग करके यहाँ से डाइनिंग में जाएगी, तो रास्ते में ही मैं साइड में बैठ गई। अब मैंने कहा चलो अभी मुझे कुछ अच्छे चेहरे और ये चलन कुछ दिखाई पड़ेगी, लेकिन सारी की सारी से भाग गई। तो यहाँ भी कुछ लोग मुझे जानने वाले हो, कहते हैं आप प्रदर्शन बहुत करते हो, लेकिन मैं तो सोचती हूँ कि ऐसे कुछ देखूं तो मेरा उमंग उत्साह बढ़ जाएगा कि देखो ये इतना योग तपस्या कर रहे हैं, लेकिन शायद मेरी दृष्टि अलग होगी। सदा खुश रहने वाले हो ना कि थोड़ा थोड़ा कभी दुख की लहर आती है। तो मैं सोच रही थी कि दुख क्यों आता है, तो दो बातें उसमें मुख्य है कि एक तो भूतकाल का चिंतन माना अनेकानेक घटनाओं के कारण, और दूसरा है भविष्य की चिंता। तो मैं सोचने लगी कि मुझे जो भूतकाल के बारे में दुख होता है तो उसमें दो बातें हैं, जो दुख की बातें होती हैं और कुछ सुख की बातें होती है। दुख की बातें जब याद आती है तो उससे दुख और बढ़ता है, सुख की बातें याद आती है तो ओ वो समय चला गया उससे दुख होता है। तो फिर मैंने ये सोचना शुरू किया कि जो दुख की बातें थी चलो वो तो अभी चली गई, अब 5000 साल तक वो फिर से नहीं आएगी, और जो सुख की बातें चली गई ये थोड़ा दुख था तो अरे गई नहीं, वो फिर से अनेक बार मुझे वो भोगनी है। तो ये शुरू किया। और भविष्य की जो चिंता होती है तो शिवानी बहन हमेशा कहती है कि वर्तमान में अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपका भविष्य अच्छा ही होगा। फिर बाबा भी हमें बताते हैं कि संगम युग भी कल्याणकारी है और हमारा साथी कौन है, वो अगर साथी है तो कहीं भी कुछ भी परिस्थिति में वो हमें बल देगा। फिर है जैसा दिल होगा वैसा शरीर चलेगा, आधार तो दिल का है ना, दिल है दिलाराम की दिल, तो दिल की गद्दी यथार्थ चाहिए ना, नीचे ऊपर नहीं चाहिए। तो एक दिन मैंने बाबा को कहा कि बाबा आपको साथी बनाया है ठीक है, लेकिन ना वो हम भूल जाते हैं बार बार साथी बनाया है तो भी, तो आप ऐसे करो ना कि कंबाइंड रूप है ना तो आप मेरे अंदर ही रह जाओ। तो बाबा ने कहा हाँ ठीक है, लेकिन अंदर कहाँ कहाँ रखोगे मुझे अंदर। मैंने कहा आप ना मेरे दिल में ही बैठ जाओ। तो फिर बाबा ने धीरे से पूछा मेरे बैठने लायक है, तो फिर अचानक मुझे ख्याल आया अरे दिल साफ तो मुराद हासिल ये सब सुन रहे हैं, लेकिन क्या हमारी दिल इतनी साफ है जो हम बाबा को वहां बिठाए। तो उस दिन से ये अभ्यास शुरू हुआ कि नहीं दिल में क्या क्या बातें अंदर भरी है उसे साफ करो तब बाबा आ जाए।
हो जाए वो House arrest.
रोज अमृत वेले यह पाठ पक्का करो कि कुछ भी हो जाए खुश रहना है खुश करना है. तो कुछ साल पहले ऐसे हुआ कि कुछ परिस्थिति आई थी मेरे ऊपर और हमारे घर के एक बुजुर्ग व्यक्ति है वो एक दिन मुझे पूछने लगे कि आप इतने खुश कैसे रहते हो. तो मैंने कहा क्या हुआ. बोले नहीं इतना सब कुछ चल रहा है फिर भी आप खुश हैं. तो मैंने इतना नशे से उनको उत्तर दिया था कि जो पढ़ाई आजकल मैं बहुत नई नई थी 2-3 साल ही हो गए थे. तो जो पढ़ाई आजकल मैं पढ़ती हूँ ना उसमें हमें सिखाया जाता है प्राण जाए लेकिन आपकी खुशी नहीं जाए. तो इतनी सी बात पर मैं अपनी खुशी क्यों गवाऊ. तो वो भी हैरान अच्छा ऐसी बात है क्या. ठीक है तो अभी भी मेरी यही कोशिश रहती है कि हर पल मैं खुश रहूं बाबा के साथ का अनुभव करूं. ओम शांति.
अगर कोई केवल ज्ञान सुनाए तो हम भूल जाएंगे पर यदि कोई अनुभव सुनाता है तो वो हमेशा के लिए दिल में छप जाता है. वैसे माता जी ने जितने भी अनुभव सुनाए मुझे नहीं लगता हम में से कोई उसे भूलेगा. और जितना सामीप्य बाबा के साथ इन्होंने अपना बताया जो बाबा से बार बार बातें करना और बाबा से प्रत्युत्तर मिलना ये एक योग की ही बहुत सुंदर अवस्था है. और जैसे बाबा से हम कितने समीप हैं और उसके जो अनुभव है उसकी ये प्रैक्टिकल लाइफ का अनुभव है. तो बहुत अच्छा लगा आपका ये सारा अनुभव सुनकर. और जैसे मैंने कहा अनुभव कभी भूलता नहीं है ज्ञान तो शायद हम भूल जाएंगे. और बाबा ने हर ब्राह्मण आत्मा को इतना अनुभव से संपन्न बनाया है. हर एक ब्राह्मण आत्मा जैसे अनुभव की खान है. वहां अगर किसी बाहर की संस्थाओं में जाओ तो कोई एक गुरु बैठता है और वो एक प्रवचन करता है. उनके किसी शिष्य को पूछो तो वो इस तरह कुछ बोल नहीं सकते या उनके पास इतने अनुभव नहीं है. परंतु ये एक ऐसी संस्था है कि जिसमें हर आत्मा एक लीडर है हर आत्मा एक स्पीकर है हर आत्मा एक अनुभव की खान है. जैसे कि एक फैक्ट्री है जहां से लीडर्स निकलते हैं. तो बाबा ने ऐसा हर एक का जीवन हम सब का जीवन ऐसा दिव्य अनुभव से भर दिया है. बहुत अच्छा लगा सुनकर. ओम शांति. डॉक्टर कुमुद बहन का
उपकारी